अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरसाय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री आरतिराम श्री चैतन्य मनोभीष्टं भूतले स्वयं लोक कदा मह्यं ददाति स्वपदानिकम् श्रीगुरु श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विता नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने नमस्ते सारस्वतये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशुद्धिवादी पाश्चात्यदेशधारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीन बन्धो जगत्पते गोपेशमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानोस्तुते देवी प्रणवाणी हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कहा कि जाओ, अब सृष्टि के संहार के समय जो वर्षा होती है उस प्रकार की वर्षा बरसाओ ब्रजभूमि के लोगों के ऊपर। उनको सबक सिखाओ अच्छी तरह से कि इंद्रदेव का अपमान करने से देखो उनको क्या फल मिलेगा, आइंदा ऐसे कभी ये नहीं करेंगे। तो सामर तक बादल इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार ब्रजभूमि के ऊपर आए, मूसलधार वर्षा हुई। ऐसी वर्षा जो कि केवल सृष्टि के संहार के समय देखी जाती है। और केवल पानी के बूंद नहीं गिर रहे थे, पानी के खंभे गिर रहे थे। सब जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी। सारे ब्रजवासी लोग बहुत पीड़ित अवस्था में थे। इतनी ठंडी अचानक हो गई, तूफान जैसा हो गया, ठंडी हवा बह रही थी। ब्रजवासी लोग भीग रहे थे, अपने गायों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, गायों को वापस बुला रहे थे, कहाँ है गैया। और सभी लोग कृष्ण के पास आए कि हे गोकुलनाथ कृष्ण, हम सबको बचाओ। कृष्ण ने सोचा, लगता है ये इंद्रदेव का कार्य है। इंद्रदेव के मान को चोट पहुंची है, इसलिए इंद्रदेव ने ऐसी हरकत की है। कोई बात नहीं, इंद्र को भी हम निपटा लें। तो श्री कृष्ण ने कहा, कोई चिंता नहीं करना मेरे प्रिय ब्रजवासियों। दौड़ते हुए श्री कृष्ण गए गोवर्धन के पास और बड़े आसानी से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर उठा लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा कि आओ आओ, आप सब इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आओ। हो सकता है कि शुरुआत में ब्रजवासियों को थोड़ी हिचकिचाहट हुई होगी कि भाई हम इतने बड़े पर्वत के नीचे चले जाएं, और एक ही लड़का छोटा लड़का है 7 साल का। हाँ, हम इसके आश्रय में आए हैं और ये हमें बचाते आया है। अभी इतने असुरों का वध करके हमें बचाया तो है इसने, परंतु असुरों को मारना, हालांकि वो जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो एक बात है, और ये विशाल पर्वत को धारण करना, और उसको ऊपर ऐसे धारण करके रखना, ये कुछ नामुमकिन सा लग रहा है, असंभव लग रहा है, फिर भी कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रख के सारद रजोगुण से नीचे चले आए और थोड़े ऊपर देख रहे थे क्या होगा, कहीं अब गिरा तो फंस फिर क्या है, अब तो कोई और गुंजाइश नहीं रहेगी। और थोड़े गोपगण जो है वो सोच रहे थे कि चलो कृष्ण क्या, अभी हम अपने लाठी लेकर गोवर्धन को हम आधार देंगे। कृष्ण भगवान देखकर हंस रहे थे, उधर माता यशोदा और अन्य जो वरिष्ठ गोपियां थीं, वो भी चिंतित थीं कि कृष्ण कहीं गोवर्धन को धारण करते करते कमजोर ना हो जाए। तो माता यशोदा ने लाकर भोजन दिया कृष्ण को कि ले लो कुछ प्रसाद, ले लो भोजन खाओ, ताकत कैसे आएगी गोवर्धन को धारण करने के लिए। और जो ग्वालबाल मित्र थे वो भी कृष्ण के पास जा रहे थे, थोड़ा मालिश कर रहे थे, ठीक है कृष्ण बने रहो, पता नहीं अब है तुम्हारे साथ में। और सारी जो तरुणी गोपियां थी वो तो कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करती रही, बल्कि सारे ब्रजवासी सात दिन लगातार कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते रहे। कृष्ण का मुखारविंद जो है वो अमृत के समान है, और इस अमृत का पान सारे ब्रजवासी अपने आंखों से कर रहे थे, और इस अमृत का पान करने में वो कभी थके नहीं, और जिसके कारण उन्हें भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, थकावट नहीं हुई, नींद नहीं आई, वो ऊब नहीं गए, केवल सात दिन लगातार भगवान को देखकर 24 घंटे वो ऊबे नहीं। उस जिस दुनिया में हम देखते हैं कि किसी एक चीज के ऊपर हम देखते रहे, देखते कि कब तक देखें, उसी चीज को बार बार देखने से व्यक्ति ऊब जाता है, परंतु श्री कृष्ण नित्य नव नमायमान है, हमेशा ताजे लगते हैं, उनको देखते रहने से व्यक्ति ऊब नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ वैशांत की भाषा में बोलते हैं कभी कंटाला नहीं आता है, कृष्ण को देख के आदमी हमेशा हर्षित रहता है। तो कृष्ण भगवान ने ऐसे लगातार सात दिन गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और फिर इंद्रदेव के होश ठिकाने आ गए। इंद्रदेव को पता चला कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये तो स्वयं भगवान है, और मैंने इस कृष्ण को केवल एक साधारण बच्चा समझा था, बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने, अब मेरा क्या होगा, अब वास्तव में मेरी बुरी हालत है। तो जल्दी से सामर्थक बादलों को वापस बुलाने, चले आओ वापस। इंद्रदेव ने देखा कि वर्षा बंद हो गई है, अब सब जगह सूर्य की किरणें लग रही थी, फिर से वातावरण कुछ ठीक ठाक लगा। भगवान के सुदर्शन चक्र के कृपा से, हालांकि बाहर तूफान हो रहा था, ठंडी बहुत थी, तेज हवा बह रही थी, परंतु गोवर्धन के नीचे वहां बिल्कुल एक सुविधाजनक वातावरण था, कोई कठिनाई नहीं हुई ब्रजवासियों को, तापमान भी बिल्कुल ठीक ठाक था। तो सुदर्शन चक्र गोवर्धन के बाद गए मानसी गंगा के पास चक्र तीर्थ में, और वहां रहे, और मानसी गंगा के तट पर अभी तक ये चक्र तीर्थ स्थान है जहां सनातन गोस्वामी अपना भजन किया करते थे। शिव जी का शिवलिंग मंदिर भी है वहां पर, शिवलिंग है चक्रेश्वर महादेव। तो खैर श्री कृष्ण ने फिर ब्रजवासियों से कहा कि हे मेरे प्रिय ब्रजवासियों, अभी आप निडर होकर बाहर चलिए, अब वर्षा समाप्त हो चुकी है, इंद्रदेव का क्रोध शांत हो चुका है। तो सारे ब्रजवासीगण बाहर आए, सब अपने अपने जगह गए देखने के लिए कि क्या हालत है। सब जगह पानी पानी था, लेकिन अब जैसे पानी नीचे चलता गया, फिर सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों में चले गए। इस प्रकार से इंद्रदेव का मान श्री कृष्ण ने भंग कर दिया। उधर जब सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे खड़े थे, वो केवल श्री कृष्ण को देख रहे थे, आनंद के समुद्र के लहरों में तैरे जा रहे थे, डूबे जा रहे थे। उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि समय कैसे बीत रहा है, नहीं उन्होंने ज्यादा सोच विचार करने का प्रयास किया कि कैसे है कि ये 7 साल का बालक इस विशाल पर्वत को धारण कर रहा है और वो भी 7 दिन। लेकिन जब ये लीला समाप्त हुई तब जाके ब्रजवासी अपने अपने घरों में गए, फिर जैसे साधारण भाषा में कहते हैं वो सोचने ट्यूबलाइट थी, सोचने की अरे क्या हुआ 7 दिन। 7 दिन इस कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, अरे ये कैसे संभव है। अब विश्लेषण करना शुरू किया उन्होंने, क्या हुआ था, आपस में मिलजुल कर बात करने लगे, अरे ये क्या हुआ, 7 दिन इस बालक ने गोवर्धन को धारण किया, ये है कौन ये बच्चा। फिर सारे ब्रजवासी मिल गए साथ में, चलो नंद महाराज के पास जाते हैं, अब इस मामले को अभी इसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए कि ये कृष्ण है कौन। तो नंद महाराज के पास गए, नंद महाराज से बहुत प्रेम करते थे सारे ब्रजवासी, उनके नेता थे वो, उनके राजा थे। तो नंद महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से सबका स्वागत किया और इस 26वें अध्याय का शीर्षक है अद्भुत कृष्ण, सुंदर कृष्ण, क्योंकि वो अचिंत्य है, इस कृष्ण का विश्लेषण नहीं कर पाए, इसका नापतोल नहीं कर पाए ब्रजवासी का, क्योंकि कृष्ण हमारे नापतोल के बाहर है, वो अचिंत्य है, हमारे चिंतन शक्ति के बाहर है। फिर भी ब्रजवासी कोशिश कर रहे थे, तो वो नंद महाराज के पास आए और कहने लगे कि नंद बाबा ये देखिए ये कृष्ण है, केवल 7 वर्ष का है, 7 वर्ष के होने पर भी इसने ये विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। सप्ताह मतलब 7 वर्ष का था है वो, और कैसे ये संभव है, और ये 7 साल की बात नहीं है, जब उसका जन्म मात्र हुआ था, थोड़े दिनों का था, महीनों का भी नहीं, जबकि उसने पूतना राक्षसी का वध किया। फिर आगे चल के जब उसे शकट के नीचे रखा गया, उस गाड़ी के नीचे अपने नाजुक चरण कमलों से उसने एक लात मारी उस शकट को, और उस भयंकर शकट को जो कि बहुत वजनदार था और उसमें इतना सारा सामान आदि रखा था, उसको समाप्त कर दिया, और उसमें असुर छिपा था शकटासुर, उसका वध कर दिया इस छोटे से बालक ने। और आगे चल के जब वो केवल 1-2 महीने का था, तो भवंडर के रूप में एक असुर आया जिसका नाम था त्रिणावर्त, और त्रिणावर्त उसे उठा के ले गया और श्री कृष्ण ने आसमान में जाकर उसका वध कर दिया, जबकि उसकी आयु जो है बहुत कम थी। और आगे चल के हम देखते हैं कि एक बार माता यशोदा ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को बांध दिया उखल से, श्री कृष्ण ने उखल को खींच लिया तो यमलार्जुन वृक्षों के बीच में, और बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया, एक छोटे बच्चे के लिए कैसे संभव है। और आगे चल के फिर श्री कृष्ण ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया, ये बकासुर तो पक्षी का रूप लेके आया था, और केवल उसके चोंचों को फाड़ कर उसने उसका वध कर दिया, और ये वत्सासुर जो है ये भी बहुत शक्तिशाली असुर था, उसने एक छोटे गाय के बछड़े का एक वत्स का रूप धारण किया, और बड़े आसानी से श्री कृष्ण ने इस वत्सासुर का वध कर दिया। और भी थोड़े असुर आए थे जैसे धेनु का असुर, उसने तो धेनु के एक गधे का रूप धारण किया, और कृष्ण बलराम इन दोनों ने मिलके न केवल धेनु का असुर परंतु उसके साथ में जितने भी उसके साथी थे सब बड़े बड़े भयंकर असुर थे, उन सब का वध कर दिया। साथ साथ में फिर से बलराम जी के साथ में श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर और अन्य असुरों का वध किया, और उसके बाद ग्रीष्म काल में एक भयंकर दावानल हुआ जिसमें हम सब बहुत पीड़ित थे, जान का खतरा था, लेकिन श्री कृष्ण ने इस अग्नि को निगल लिया एक छोटे बच्चे ने, और फिर कालिया के ऊपर तब नृत्य करके कालिया दमन कर दिया। कालिया जो इतना जहरीला सांप था, इतना जबरदस्त और शक्तिशाली था ये सांप, परंतु श्री कृष्ण ने आसानी से उसको मार डाला। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं हे नंद महाराज कि ये बच्चा है कौन, ये सब ऐसे कार्य कैसे कर पा रहा है, और हम ये भी नहीं समझ रहे हैं कि हमारे मन में इस कृष्ण के प्रति इतना अनुराग, इतनी आसक्ति, इतनी रति, इतना प्रेम क्यों है। हमारे बच्चों से भी ज्यादा हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, ये कैसे संभव है। और इतना ही नहीं, कृष्ण भी हमसे इतना ही प्रेम करता है, इतना ही आसक्त हम सबसे है। तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परस्पर ये जो हमारा हमारी आसक्ति है वो क्यों है, कृष्ण हमसे इतने आसक्त क्यों है और हम श्री कृष्ण से इतना आसक्त क्यों है। तो नंद महाराज मुस्कुराकर बोलने लगे, अरे ब्रजवासी आप क्यों इतने विचलित हो रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी रहस्य है। ठीक है, जो भी है आपको रहस्य बता देता हूं, जो भी है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो गर्ग मुनि आए थे जो यदुवंश के कुल गुरु हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि जो आपका बेटा है इसका जन्म पहले भी हो चुका है, पहले सफेद रंग में, कभी लाल रंग में, कभी पीले रंग में, और इस समय कृष्ण वर्ण में वो प्रकट हुआ है, और ऐसे युग युग में प्रकट होता है। और जो इंद्रदेव के शत्रु होते हैं, जो असुर होते हैं, जो उत्पात करते हैं, तो उनका दमन करते हैं, उनका वध करते हैं, ये धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे समय समय पर ये आते रहते हैं। इसलिए आपका पुत्र ही अर्जुन पहले भी आ चुका है, पहले भी ये बहुत अद्भुत कार्य कर चुका है, और ये अब इस जन्म में भी आप सारे ब्रजवासियों को वो बड़ा आनंद प्रदान करेगा। कल्याण का उदय यहाँ ब्रज में होगा श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ, बहुत मंगलमय होगा इसका जीवन, और मंगल्य का विस्तार करेगा ये बच्चा। इसलिए आप बिल्कुल डरिए नहीं, बल्कि गुणों में, ऐश्वर्य में, कीर्ति में, प्रभाव आदि में इसके गुण जो है ये नारायण के समान है, नारायण समान। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो फिर नंद महाराज ब्रजवासियों से कहने लगे कि गर्ग मुनि ने ऐसे कहा था, इसलिए है ब्रजवासियों आप बिल्कुल चिंतित नहीं होना। ये जो कृष्ण है ना, ये मन्ये नारायण से अंश, कि मैं उसको मानता हूँ कि ये नारायण का अंश है, और अंश होने के नाते बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इसके लिए ऐसे कार्य कोई अद्भुत नहीं है, कोई असंभव नहीं है। फिर भी है तो ये मेरा बेटा और जब वो गलत काम करता है तो दंड देना मेरा कर्तव्य पड़ता है। ब्रजवासी जो भी कह रहे थे, ये एक विरोधाभास लग रहा है, एक और ये ऐसे भयंकर कार्य करता है जो कि अन्यों के लिए असंभव है, कठिन ही नहीं असंभव है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब हम उसे लाड़ प्यार करते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, और जब किसी कारण हम भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं लाड़ प्यार, तो बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, और ऐसे कोई बादलों की गड़गड़ाहट आदि होती है तो यशोदा मैया की गोदी में भाग भी चला जाता है, और दूसरी ओर ऐसे बड़े बड़े असुरों का वध करता है। तो ये विरोधाभास जो है, हम कुछ मन में कुछ बैठ नहीं रही है बात, ये क्या है ये बच्चा। तो नंद महाराज भी बोलने में बड़े निपुण थे, बड़े मीठे मीठे स्वरों में सांत्वना दी सारे ब्रजवासियों को। तो उस समय के लिए तो ब्रजवासी समझना चाहिए कि नारायण के यहां से चले गए, लेकिन फिर भी कुछ बात बैठी नहीं। तो कृष्ण का गुणगान करते करते वो अपने अपने जगह में चले गए। इस प्रकार से गोवर्धन लीला समाप्त हुई, लेकिन केवल यहाँ वृंदावन में, वहां स्वर्गलोक में समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तो इंद्रदेव अब बहुत घबराए हुए थे। अब इंद्रदेव सोच रहे थे, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, कृष्ण को मैं नहीं जान सका, केवल घमंड के कारण, ईर्ष्या के कारण मैंने सारे ब्रजवासियों को, जो कि श्री कृष्ण के कितने प्रिय भक्त हैं, उनको कितना कष्ट दिया, और श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब ये अपराध का फल क्या होगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी 27वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं, और इस अध्याय का शीर्षक है कि इंद्रदेव और माता सुरभि श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो इस अध्याय का ये पहला श्लोक है, यहाँ बोर्ड के ऊपर आप देखिएगा, इसकी चर्चा हम संक्षेप में आज करेंगे। श्री शुक्र उवाच गोवर्धन धृते शैले क्या हुआ, गोलोकात् आव्रजत् कृष्णं सुरभिः। सुरभि देवी जो कि गोलोक में थी, आव्रजत् कृष्णं, वो वृंदावन में कृष्ण के पास आई। शक्र एवच, शक्र अर्थात इंद्र, इंद्र देव का दूसरा नाम है शक्र। तो इंद्र देव को साथ में लेकर गोलोक से सुरभि आई। सुरभि गोमाता है और ये गोलोक जिसका उल्लेख सुखदेव जी यहाँ कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत का गोलोक वृंदावन नहीं है। इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर भी एक भौतिक लोक है गोलोक, जो गायों का लोक है। वहाँ भरपूर गाय रहते हैं, सुरभि गाय। ये भौतिक जगत के सुरभि गाय है, गोलोक वृंदावन के सुरभि गाय नहीं है। और सबसे प्रमुख जो गाय है गोलोक में, इस भौतिक गोलोक में, वो सुरभि गाय है। वहाँ इस गोलोक में सब कामधेनु गाय है, जितना चाहे वो दूध दे सकती है, अमृत समान दूध। तो ये सुरभि गाय इंद्रदेव को लेकर कृष्ण के पास आई ब्रज में, जबकि गोवर्धन को धारण करके व्रत की रक्षा कृष्ण ने वर्षा से की थी। तो ऐसा यह सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो इंद्रदेव के मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। एक तो इंद्रदेव को थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि मैंने क्या किया, पछतावा भी हो रहा था। दूसरी बात, इंद्रदेव को लज्जा भी लग रही थी और डर भी था कि किस प्रकार का दंड मुझे मिलेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अवश्य जाके कृष्ण की क्षमा याचना करनी चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी गलती क्या थी, मैं तो केवल था मैनेजर और हूँ मैनेजर प्रबंधक, और मैंने सोचा कि मैं मालिक हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, यदि किसी कारखाने में जो कर्मचारी है वही अपने आप को मालिक समझना शुरू करे तो फिर समस्या तो होगी ना। हो सकता है कि मालिक उसे नौकरी से निकाल दे, परंतु कृष्ण इतने कृपालु है कि इंद्रदेव को नौकरी से निकाली नहीं, इंद्रदेव को पद मुक्त नहीं किया, इंद्रदेव को वही रहने दिए पद में। परंतु इंद्रदेव को किस प्रकार से के ऊपर उन्होंने कृपा की, ये आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो इंद्रदेव भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, अब मैं क्या करूं बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अकेले नहीं जाना, कृष्ण के शरण में हम अकेले नहीं जा सकते, है ना। ऐसे कोई प्रिय व्यक्ति चाहिए जो सिफारिश हमारी कर सके कृष्ण के पास, हे कृष्ण कृपया स्वीकार कीजिए, ये बहुत अयोग्य है, परंतु क्या करें, आप बड़े कृपालु हैं, तो स्वीकार कीजिए। तब कृष्ण कहते ठीक है, तुम कह रहे हो ना, ठीक है चलो। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी कृपा और उनका आश्रय दोनों की आवश्यकता है, तब जाकर श्री कृष्ण की कृपा और आश्रय प्राप्त हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोच विचार किया और कहा कि हाँ, सुरभि देवी को साथ में लेकर जाना। जब इंद्रदेव सुरभि के पास आए तो इंद्रदेव ने कहा, सुरभि देवी कृपया आप मेरे साथ साथ आइए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आप सामने जाइए और कृष्ण आपको देख के संतुष्ट होंगे, उनका क्रोध कम हो जाएगा, तो तब फिर मैं क्षमा याचना कर सकता हूँ श्री कृष्ण, फिर वो अवश्य मुझे क्षमा करेंगे। पहले तो सुरभि देवी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इंद्रदेव, देवताओं के राजा इंद्र मेरे पास आए हैं, तो राजीनामा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज, इंद्र एक बार थोड़ा हम फिर से बातचीत कर लेते हैं, बहुत गलती कर ली। तो पहले प्रवृत्ति भी हिचकिचाई, फिर कहने लगी ठीक है कृष्ण देव आप देवराज हैं तो ठीक है चलिए मैं आपके साथ में चलती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे प्रस्ताव क्यों रखा कि इंद्रदेव सुरभि माता को ले जाए, क्योंकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण को गाय कितने प्रिय है। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण का यही काम है, वो है गोपाल, गायों का पालन करते हैं। चिंता मणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष लक्षाविदेशम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस गोविंद के शरण में जाता हूँ, उसका नमन करता हूँ जिनका धाम चिंतामणि है। प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, ये चिंतामणि धाम है और यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और वहां पर लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, और ये गोविंद जो है ये लाखों लाखों सुरभि गाय का पालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमान, और ऐसे अनेक लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं जो श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मैं नमन करता हूं। तो गाय श्री कृष्ण के लिए इतने प्रिय हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो गाय को यदि कृष्ण देखेंगे तो उनका गुस्सा कम हो जाएगा। जिस प्रकार से जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे तो सारे देवताओं को साहस नहीं हुआ कि वो नरसिंह देव के सामने जाए, उन्होंने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद भी वत्स के समान था। नरसिंह देव ने जब प्रहलाद को देखा तो उनकी भावना ऐसी हुई जब गाय अपने वत्स को अपने बछड़े को देखती है। सौम्य मासूम और शुद्ध, ये वत्स के लक्षण होते हैं जो प्रहलाद के अंदर भी थे। तो उसी प्रकार से ब्रह्मदेव जानते थे कि जैसे गाय सामने आएगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गोलोक वृंदावन की गाय ये सुरभि नहीं थी, क्योंकि इंद्रदेव के साथ देने के लिए गोलोक वृंदावन की गाय थोड़ी आएंगे, वो तो वो श्री कृष्ण के साथ रहेंगे कृष्ण लीला में। तो ये सुरभि गाय हालांकि भौतिक जगत की गाय है, शरण में जाता हूँ उनका नमन करता हूँ जिनका धाम चिंतामणि है। प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, ये चिंतामणि धाम है और यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और वहां पर लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, और ये गोविंद जो है ये लाखों लाखों सुरभि गाय का पालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमान, और ऐसे अनेक लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं जो श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मैं नमन करता हूं। तो गाय श्री कृष्ण के लिए इतने प्रिय हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो गाय को यदि कृष्ण देखेंगे तो उनका गुस्सा कम हो जाएगा। जिस प्रकार से जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे तो सारे देवताओं को साहस नहीं हुआ कि वो नरसिंह देव के सामने जाए, उन्होंने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद भी वत्स के समान था। नरसिंह देव ने जब प्रहलाद को देखा तो उनकी भावना ऐसी हुई जब गाय अपने वत्स को अपने बछड़े को देखती है। सौम्य मासूम और शुद्ध, ये वत्स के लक्षण होते हैं जो प्रहलाद के अंदर भी थे। तो उसी प्रकार से ब्रह्मदेव जानते थे कि जैसे गाय सामने आएगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गोलोक वृंदावन की गाय ये सुरभि नहीं थी, क्योंकि इंद्रदेव के साथ देने के लिए गोलोक वृंदावन की गाय थोड़ी आएंगे, वो तो केवल श्री कृष्ण के साथ रहेंगे कृष्ण लीला में। तो ये सुरभि गाय हालांकि भौतिक जगत की गाय है, फिर भी गाय है और कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। लेकिन श्री कृष्ण के साथ जो गाय थी, जो लीला कर रहे थे कृष्ण के साथ, जिनको कि श्री कृष्ण चराने के लिए प्रतिदिन ले जाया करते थे, वो गोलोक वृंदावन की गाय थी। और ऐसे गायों में से ऐसी भी गाय थी जो कि पूर्व जन्मों में ऋषि थे, साधु थे और तपस्या के बल पे, अपनी भक्ति के बल पे उनको ये मौका मिला था कि वो श्री कृष्ण की गोचार लीलाओं में शामिल हो जाए। श्री कृष्ण का दोहन करते थे, उनको चराने ले जाते थे, उनको बांसुरी से और कभी कभी अपने वचनों से वो नाम से बुलाया करते थे, कभी गायों को आलिंगन करते थे। इस प्रकार से श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत अपार हैं श्री गायों के साथ। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि गायों की हमें बहुत अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। गायों का महत्व क्या है ये ब्रह्मदेव के इस एक कार्य से हम समझ सकते हैं, कि वो समझ गए कि इंद्रदेव की अगर के ऊपर कृपा यदि भगवान की होनी है तो केवल सुरभि देवी के माध्यम से हो सकती है। ऐसे बताया गया है कि केवल गायों के पीठ को हम खुजाएंगे, उनको थोड़ा हरा घास खिलाएंगे, गाय की रक्षा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे तो फिर भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ऊपर तो फिर हमें और क्या चाहिए जीवन में, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता में लोगों को ये सरल तथ्य का ज्ञान नहीं है कि केवल गाय और बैल को संतुष्ट रखने से सारा मानव समाज संतुष्ट और प्रसन्न हो सकता है। कितनी सरल बात है और इस सरल बात को लोग नहीं जानते, कैसे सुख और शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है आजकल के लोग नहीं जानते हैं। केवल कृष्ण के नाम उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण की कथा, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए, बस सब कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब सुरभि देवी वहां पर सामने आई तो इंद्रदेव उनको पीछे पीछे चले आए। वैसे इंद्रदेव बड़े घबराए हुए थे, सुरभि देवी ने चेतावनी दी इंद्रदेव से कि देखो अब देवराज का ठाट भूल जाना भाई, जब श्री कृष्ण के सामने जाओगे ना अपने ऐरावत हाथी घोड़े ये सब छोड़ देना पीछे, एक साधारण व्यक्ति की तरह जाना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये ठाट वाट पसंद नहीं है, ये सब नकली ठाट है, नकली ऐश्वर्य है, उधार का है सब कुछ, है ना। जिन चीजों के होने से व्यक्ति के हृदय में घमंड हो जाता है वो चीज उधार के ही है ना, बल्कि उधार क्या चोरी के है। उधार कम से कम ये होता है कि किसी के अनुमति से उधार लेते हैं कि भाई मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, मुझे थोड़े पैसे दे दो, तो फिर वो कहता ठीक है मैं एक साल के लिए तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं। परंतु जब किसी की अनुमति के बिना हम कोई चीज छीन लेते हैं तो उधार भी नहीं होता, तो चोरी का माल होता है। और चोरी के माल के ऊपर हम बहुत अपना बड़प्पन सब जगह दिखाए, देखो मेरे पास कितना है, मेरे पास ये है, इतना धन है, देखो मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, गा सकता हूँ, मैं कितना प्रसिद्ध हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। ये सारे गुण जो है ये तो श्री कृष्ण के गुण है, जो लेश मात्र किसी व्यक्ति के अंदर प्रकट हो रहे हैं भगवान की कृपा से। तो जब खुद व्यक्ति सोचता है कि ये सब मेरे गुण हैं, तो फिर वो उसके अंदर घमंड हो जाता है। लेकिन जब वो समझता है कि ये मेरे गुण नहीं है, ये वास्तव में श्री कृष्ण के गुण हैं, जो उनकी कृपा से अभी वो मेरे माध्यम से प्रकट करा रहे हैं, तो यदि हमें ऐसी कोई भावना होनी है तो कृष्ण के प्रति होनी चाहिए कि देखो कृष्ण कितने महान हैं, कि मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के माध्यम से भी वो ऐसे बड़े बड़े कार्य करवा रहे हैं। ये सही भावना होनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि राजा प्रताप रुद्र उनसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि महाराज प्रताप रुद्र एक अच्छे भक्त थे, बड़े श्रद्धालु और भावुक भक्त थे, और राज्य के प्रति ऐश्वर्य के प्रति उनको कोई भी आसक्ति नहीं थी, कोई लगाव नहीं था, बिल्कुल कोई घमंड भी नहीं था। परंतु चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण पेश करना चाहते थे सारे समाज के सामने कि कैसे एक सन्यासी को केवल रुपये और इंद्रिय भोग वाले राजा से संग नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान से ज्यादा कृपाणु होते हैं। इसलिए सारे भक्तों ने मिलजुल कर एक दिव्य षड्यंत्र रचा और एक योजना बनाई जिससे कि महाराज प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। महाप्रभु भी श्री कृष्ण है, अंतर्यामी है, कुछ जानते थे, फिर भी ऐसे बर्ताव किया उन्होंने जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अब महाप्रभु यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी थकान हो गई है उनको, वहां जाओ, लेकिन देखो राजा की वेशभूषा बाहर छोड़ दो, एक साधारण व्यक्ति के वेश में जाओ। तो जब इस भाव से अपने वेश को बदल के और वेश से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने भाव को सही करके जब महाराज प्रताप रुद्र वहां पर पहुंचे, अपने राजभाव को छोड़कर जब वो गए, तब चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण के सामने जब हम आते हैं तो हमें अपने भाव को बदलना चाहिए। भाव हमारा यही होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, हम और कुछ भी नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के दासों के दासों के हम दास हैं। संसार में लोगों को दास बनना ये अच्छा नहीं लगता है। हमारे संस्था में जब एक भक्त दूसरे भक्त को चिट्ठी लिखता है तो अंत में वो ऐसा कहता है आपका दास और फिर अपना नाम लिख देता है। तो एक बार एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ऐसे पत्र लिखा अपने पिता को जो कि भक्त नहीं थे, और पिता ने देखा कि उस आपने अंत में लिखा है योर सर्वेंट आपका दास। उसने बच्चे अपने पुत्र को कहा बाद में, अरे तुम के नौकर बनने के लिए वहां गए हो क्या? हमने सोचा तुम आध्यात्मिक जीवन के लिए गए हो, कुछ पाने के लिए गए, ये क्या तुम्हें सिखा रहे नौकर बनने के लिए सिखा रहे हैं? वास्तव में सही उत्तर क्या है? हाँ, सही उत्तर है हाँ, हम नौकर बनने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन नौकर नाम से सभी को कहना है नौकर और मैं, अरे भगवान श्री कृष्ण का नौकर बनना, उनके भक्तों की सेवा करना, उनके भक्तों के सेवक बनना, ये तो अनेक जन्मों के सुकृति और भक्ति करने के बाद ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बेचारा इस भ्रम में अनेक जीवन में अनेक योनियों में भ्रमण करते आया है कि मैं प्रभु हूँ, मैं सेवक नहीं हूँ, उसे ऐसे भ्रमण करते रहना पड़ेगा और हर बार उसके मान का भंग होगा, जैसे कि इंद्रदेव का हुआ। परंतु इंद्रदेव भक्त है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस रूप से आई, उनकी भक्ति और तीव्र हो गई। परंतु साधारण जो असुर वृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो भक्ति में नहीं आते हैं, बारंबार उनको जन्म लेना पड़ता है, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं वो। तो माता सुरभि ने ऐसे कहा इंद्रदेव से कि जाओ साधारण वेश में जाना और बड़े भाव से कृपा याचना श्री कृष्ण की वहां पर करना। जब श्री कृष्ण तक इंद्रदेव पहुंचे तो श्री कृष्ण बाहर निकले हुए थे, गोवर्धन लीला समाप्त हो गई थी। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे मैंने मेरे प्रिय ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को उठाया था और बेचारे गोवर्धन के ऊपर सारा प्रहार हुआ। इंद्रदेव के जो वज्र हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिन वज्रों का प्रयोग करके इंद्रदेव कभी कभी क्रीड़ा में पहाड़ों को चूर चूर कर देते हैं, वही वज्र अनेक वज्र का प्रहार, वज्रों का प्रहार ये गोवर्धन के ऊपर हुआ। तो कहीं गोवर्धन तो कोई नुकसान नहीं हुआ, गोवर्धन को कुछ पीड़ा तो नहीं हुई, साथ साथ गोवर्धन के नीचे जो मेरे प्रिय ब्रजवासी थे उनकी तो रक्षा हो गई, लेकिन सारे ब्रज में क्या हाल है? इस प्रलय के कारण मुझे देखना है, इसलिए श्री कृष्ण बाहर टहलने के लिए निकले थे कि देखने के लिए, परीक्षण करने के लिए कि क्या हाल है सत्य का। इंद्रदेव के इस कार्य के कारण क्या हो गया है पृथ्वी को, वो देखना चाहते थे। और एक आंतरिक कारण था श्री कृष्ण के बाहर ऐसे घूमने का, वो जानते थे कि इंद्रदेव अभी आने वाले हैं। तो बड़े कृपालु हैं इंद्र, अभी सबके सामने इंद्र आएंगे, बेचारे देवराज हैं, सबके सामने आएंगे, क्षमा याचना करेंगे, बहुत गलती हुई और मैं कुछ काटूंगा, सबके सामने करना अपमान जैसे हो जाएगा इंद्र का। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, जब वो ऐसे क्षमा करना चाहते हैं तो वो सोच रहे थे कि इंद्रदेव का सबके सामने अपमान न हो, उसकी मर्यादा भी बनी रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के सामने जब केशव कश्मीरी जो है बुरी तरह से पराजित हुए, तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े मीठे ढंग से उनसे बात की। चैतन्य महाप्रभु की ये विशेषता थी जब वो निमाय पंडित की भूमिका में थे कि हालांकि वो सभी को हरा डालते थे और कभी कभी जगह जगह जाकर जो जितने भी भक्त थे और जितने बड़े विद्वान थे उनको ललकारते थे कि आओ मेरे साथ बात करो, मुझे तर्क करो, व्याकरण के ऊपर, अलंकार आदि के ऊपर। सभी लोग घबरा जाते थे, भाग जाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित इतने बुद्धिमान थे कि कोई उनके सामने तर्क कर ही नहीं सकता था। परंतु जब वो हरा डालते थे सबको, उनको अपमानित नहीं करते थे, ऐसे मीठे ढंग से हरा डालते थे कि जो व्यक्ति हार जाता था वो भगवान की वो निमाय पंडित की प्रशंसा करते करते वहां से निकल जाता था, उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचती थी और निमाय पंडित से ज्यादा प्रेम करने लगता था। तो केशव कश्मीरी के साथ भी निमाय पंडित ने ऐसा किया। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण इंद्रदेव का प्रेम बढ़ाना चाहते थे और ये घमंड जो है इंद्रदेव के प्रेम की वृद्धि में एक अड़चन बन गया था, रुकावट बन गया था, कांटा बन गया था। तो ये घमंड जो होता है, अहंकार जो होता है, ये कांटा होता है हमारे हृदय में। तो कभी कभी कृष्ण भक्तों के हृदय में जब देखते हैं घमंड है, उस कांटे को निकाल देते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कभी कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है ना। तो उस कांटे को निकालने के लिए श्री कृष्ण कभी कभी भक्तों को भी ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि भक्तों को सोचते हैं कि कृष्णा मेरे साथ ऐसे क्यों किया, परंतु ये इंद्रदेव की, ये कृष्ण की कृपा है। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण चाहते थे कि मैं सब ब्रजवासियों के बीच में से बाहर जाऊं, बाहर जाके एक किसी एकांत स्थान में रहूं, जहां इंद्रदेव मुझे खोजते हुए ढूंढते हुए चले आएगा और तब एकांत स्थान में मुझे जो करना है उसके साथ में करूंगा, उसे जो करना है वो करेगा, वो जो मेरी स्तुति करेगा, कृपा याचना करेगा, वो एकांत में हो और मैं जो उसे संदेश दूंगा वो भी एकांत में हो जाए। इसलिए श्री कृष्ण जहाँ ऐसे चले आए, वहाँ पर सुरभि देवी कृष्ण को लेकर आ रही थी। थोड़ी दूरी पर श्री कृष्ण को देखा टहलते हुए इंद्रदेव ने, और इंद्रदेव ने पूरा दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेकिन इंद्रदेव ने उपेक्षा की, क्षमा कीजिए, श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की उपेक्षा की, ऐसे व्यवहार किया कि जैसे उन्होंने इंद्रदेव को देखा भी नहीं, चलते गए। इंद्रदेव के दायरे चले गए तो इंद्रदेव बड़े चिंतित हुए। तब सुरभि देवी सामने आई कि हे कृष्ण, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। नंद महाराज के राजधानी के सिर के ऊपर आप सौभाग्य के तिलक हैं। आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि तो सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आपने इस ब्रह्मांड के भीतर एक अद्भुत और असीमित ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपकी शक्ति अचिंत्य है। आपके जो ऐश्वर्य हैं हमारे नापतोल के सीमा के बाहर हैं। वैसे मैं ब्रह्मा जी के पास गई थी, ब्रह्मा जी ने भी मुझे बुलाया था और ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया था कि जाओ बेचारे इंद्रदेव को लेकर श्री कृष्ण के पास जाना, श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, वो अवश्य कृपा करेंगे इंद्रदेव के ऊपर, तुम साथ में ले जाना और देखना कि किसी न किसी तरह से इंद्रदेव के ऊपर ही कृपा हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मेरी भी ऐसी गलती हुई थी, काफी पहले मैंने भी श्री कृष्ण को सही नहीं समझा था। मैंने श्री कृष्ण के जो साथी हैं, उनके जो ग्वालबाल हैं, उनको और जो गाय के पछड़े हैं, मैं उनको भी चुरा कर मैंने गुफे में बंद कर दिया था। मुझे भी मेरे पद का एक अभिमान हो गया था, गर्व हो गया था, घमंड हो गया था, और मैंने सोचा कि मेरी जो योग शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं नहीं समझता था कि वास्तव में श्री कृष्ण एक सूर्य के समान है और मैं एक जुगनू के समान हूँ। आप जुगनू क्या है जानते हैं? जुगनू केवल रात के समय चमकती है। जुगनू का सौंदर्य या जुगनू का महत्व कब रहता है? रात के समय जब अंधकार होता है। लेकिन सूर्योदय होने के बाद में जुगनू के बारे में कौन पूछता है? कोई देख भी नहीं सकता है जुगनू को, क्योंकि जुगनू के सूर्य के सामने जुगनू देख भी नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी हालांकि इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे पहले दीक्षित व्यक्ति है, परम भगवान ने उनको दीक्षा दी थी, आदि कवि हैं, सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, पहले ब्राह्मण हैं इस ब्रह्मांड के, सृष्टिकर्ता हैं। फिर भी ब्रह्मा जी की जो शक्ति है जो अद्भुत है, इंद्रदेव की शक्ति से कहीं गुना ज्यादा ब्रह्मदेव की शक्ति है, और इंद्रदेव की शक्ति हमारी शक्ति से कई गुना ज्यादा है। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए अब इंद्रदेव ने भी ये गलती की, अब क्या किया जा सकता है, तो ले जाओ इस इंद्रदेव को वहां पर और अवश्य श्री कृष्ण के ऊपर कृपा करेंगे। तो सुरभि देवी तो कहने लगी कि देखो इंद्र अब बहुत लज्जित हैं, देखो सर नीचे करके आंखें नीचे करके खड़े हैं, इंद्रदेव बहुत शर्मिंदा होकर बहुत पछता रहे हैं अपने अपराध के लिए। वो सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलती की, बहुत बड़ा अपराध किया श्री कृष्ण के चरणों में। वो क्षमा याचना करना चाहते हैं आपसे, परंतु घबरा रहे हैं और ऐसे डर के कारण केवल पीछे खड़े हैं। देखिए तो आप यदि अनुमति दें तो आपके सामने आना चाहते हैं और आपकी स्तुति करना चाहते हैं, क्षमा याचना करना चाहते हैं, तो कृपया अनुमति दीजिए। तो जिस स्थान में ये घटना हुई ये है सुरभि कुंड। आप में से जो वृंदावन और ब्रज की परिक्रमा में गए हों आपने सुरभि कुंड का नाम सुना होगा। सुरभि कुंड वो स्थान है जहाँ सुरभि देवी के कारण श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के ऊपर कृपा कर दी, जहाँ पर इंद्रदेव ने स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की, प्रार्थना की, जहाँ पर सुरभि देवी ने भी भगवान की भगवान का गुणगान किया। और सुरभि कुंड के पास में ही इंद्र कुंड है जहाँ पर इंद्रदेव ने अपने दंडवत करने के बाद अपने आंखों के आंसुओं से श्री कृष्ण के चरण कमल को धो दिया और उन आंसुओं से एक कुंड पैदा हुआ, इंद्र कुंड। तो वहां जब श्री कृष्ण पहुंचे और इंद्रदेव भी वहां आए तो किस प्रकार से इंद्रदेव ने बर्ताव किया श्री कृष्ण के प्रति वो हम कल सुनेंगे। ठीक है, तो यदि संभव हो तो आप सब जल्दी आने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप आएंगे यदि 6:30-7 बजे तक भी पहुंच जाएं तो कथा जल्दी प्रारंभ हो सकती है, नहीं तो बहुत देरी हो जाती है। और अब दर्शन का भी समय हो गया है, परंतु दर्शन के पहले हमें भजन करना चाहते हैं तो आज एक दिन हम दर्शन देरी से करते हैं, नहीं तो इसके बाद 8:40 को दर्शन होंगे। इसलिए दर्शन के पहले हम चाहेंगे कि प्रवचन और उसके बाद जो भजन गाएंगे वो समाप्त हो जाए। तो जिस प्रकार से कल आप भजन के साथ साथ वृंदावन के चित्र देख रहे थे, आज ही हम वैसे ही एक भजन गाएंगे और वृंदावन के का दर्शन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप और लीलाओं का दर्शन भी करेंगे। हरे कृष्ण।